नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को भारत आने का निमंत्रण दिया, कहा वे उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वर्ष फ्रांस की अध्यक्षता में होने वाले 52G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया। ईरान ने कहा उसने तेहरान के परमाणु अभियान पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए अमेरिका के साथ मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांतों पर सहमति बनाई। और T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज शाम अहमदाबाद में भारत और नीदरलैंड्स आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेने आए कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज, फिनलैंड के प्रधानमंत्री एंट्री पेट्रो ओपो, सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिस, क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेस प्लेनकोविच, एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार कारिस, भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोपके और कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री ओल्जहाज बेक्तनोव से मिलेंगे। नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन आज तीसरे दिन भी जारी है। 5 दिन का यह सम्मेलन वैश्विक दक्षिण में आयोजित होने वाला अपनी तरह का पहला वैश्विक एआई समिट है। 20 देशों के प्रतिनिधि इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
एआई इंपैक्ट सम्मेलन 2026 के तीसरे दिन एक शोध संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। इस संगोष्ठी में एस्टोनिया के राष्ट्रपति एलिस कारिस, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद सहित कई प्रमुख व्यक्ति चर्चा में हिस्सा लेंगे। इस दिन उद्घाटन सत्र और कार्य समूह की शुरुआत भी की जाएगी। इस सत्र में इंडिया एआई इंपैक्ट सम्मेलन के व्यापक दृष्टिकोण, प्राथमिकताओं और कार्य योजना पर चर्चा होगी। एसडीजी से आगे वैश्विक विकास को एआई कैसे बदलेगा विषय पर एक विशेष सत्र भी आयोजित होगा। इंडिया एआई मिशन, एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, स्वदेशी एआई मॉडल को बढ़ावा और बड़े स्तर पर क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से देश में जिम्मेदार और भरोसेमंद एआई के उपयोग की मजबूत नींव रखी जा रही है। ऋषि जायसवाल के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की वार्ता के बाद विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने की घोषणा की गई। दोनों देशों ने कल रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिज सहित प्रमुख क्षेत्रों में किस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया। श्री मोदी ने कहा कि ये साझेदारी पारंपरिक कूटनीति से आगे बढ़कर लोगों की साझेदारी बन गई है।
फ्रांस भारत के सबसे पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में से एक है और प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर हमने इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अभूतपूर्व गहराई और ऊर्जा दी है। इस विश्वास और साझा विजन के आधार पर आज हम अपने संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में स्थापित कर रहे हैं। यह पार्टनरशिप केवल स्ट्रेटेजिक नहीं है, आज के उथल पुथल से भरे युग में यह ग्लोबल स्टेबिलिटी और ग्लोबल प्रोग्रेस की पार्टनरशिप है।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 52G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। फ्रांस इस वर्ष सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। मुंबई में एक प्रेस वक्तव्य में राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि एवियन में होने वाले शिखर सम्मेलन से पहले अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पर सहमति बनाने के लिए भारत और फ्रांस के बीच एक विशेष बैठक की जरूरत है। G7 शिखर सम्मेलन अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा और यूरोपीय संघ के नेताओं का वार्षिक सम्मेलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष कनाडा प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के नव निर्वाचित प्रधानमंत्री तारिक रहमान को सह परिवार भारत आने का निमंत्रण दिया है। श्री तारिक रहमान को लिखे पत्र में प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की उत्सुकता जताई। उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश घनिष्ठ पड़ोसी हैं और दोनों देशों के बीच साझा इतिहास, सांस्कृतिक संबंध, शांति और समृद्धि की आकांक्षा पर आधारित गहरी मित्रता है। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री रहमान को उनकी चुनावी जीत पर बधाई देते हुए इसे जनता के विश्वास और नेतृत्व में भरोसे का प्रतीक बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कनेक्टिविटी, व्यापार, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कौशल विकास, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक और जन समुदाय संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में बांग्लादेश के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने किया।
राष्ट्रपति मोहम्मद साहबुद्दीन ने ढाका के जातीय संसद भवन के साउथ प्लाजा में नई सरकार को शपथ दिलाई। बाद में 25 कैबिनेट मंत्रियों और 24 राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ली और मंत्रालयों का बंटवारा जल्द होने की उम्मीद है। समारोह में भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिश्री मौजूद रहे। शपथ के बाद बिरला ने संसद भवन में नए प्रधानमंत्री से शिष्टाचार मुलाकात की। तारिक रहमान पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं और 17 साल लंदन में रहने के बाद दिसंबर में देश लौटे हैं। उनकी शपथ के साथ लगभग दो दशक बाद बीएनपी के नेतृत्व वाली सरकार की वापसी हुई है और अगस्त 2024 में अवामी लीग सरकार के पतन के बाद बने यूनुस के अंतरिम प्रशासन का औपचारिक अंत हो गया है। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान ने कहा है कि उसने तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए अमेरिका के साथ मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांतों पर सहमति बना ली है। कल जिनेवा में वार्ता के दूसरे दौर में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा कि अभी बहुत काम करना बाकी है। कल ओमान के राजदूत के आवास पर हुई वार्ता के दूसरे दौर से पहले ईरान ने कहा है कि वे अपने परमाणु कार्यक्रम और अमेरिका द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने की संभावना पर ध्यान केंद्रित करेगा। ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी ने कहा है कि वार्ता में साझा लक्ष्यों और तकनीकी मुद्दों की पहचान की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर ईरान की हिंसक कार्रवाई और परमाणु गतिविधियों को लेकर अमेरिका द्वारा ईरान को बार बार सैन्य धमकियां देने के बाद ये बैठक हुई। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा था कि उन्हें विश्वास है कि ईरान समझौता करना चाहता है। अमेरिका की दक्षिणी कमान ने बताया है कि अमेरिकी सेना ने कल पूर्वी प्रशांत और कैरिबियाई सागर में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तीन पोतों पर हमला किया। इनमें सवार सभी 11 लोगों के मारे जाने की खबर है। रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच अमेरिका की मध्यस्थता में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में शांति वार्ता के पहले दिन की बैठक समाप्त हो गई है। मॉस्को द्वारा यूक्रेन पर किए गए पूर्ण आक्रमण की चौथी वर्षगांठ से एक सप्ताह पहले हो रही है। यूक्रेन के मुख्य वार्ताकार रुस्तम उमरेव ने कहा कि चर्चा आज फिर शुरू होगी। उन्होंने बताया कि वार्ता में व्यावहारिक मुद्दों और संभावित समाधान प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया गया है और इसके बारे में राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को जानकारी दी जाएगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाय तकाईची ने आज अपने मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा दे दिया है। तकाईची प्रशासन के सभी मंत्रियों ने मंत्रिमंडल की बैठक में सामूहिक रूप से अपने इस्तीफे सौंप दिए। नए प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए आज दोपहर संसद का नया सत्र शुरू होगा। मतदान के बाद नए प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में नियुक्तियों को अंतिम रूप देंगे और मुख्य कैबिनेट सचिव द्वारा नियुक्तियों की घोषणा की जाएगी। नागरिक अधिकार कार्यकर्ता और दो बार अमरीकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रहे जेसी जैक्सन का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के शिष्य रहे जैक्सन पिछले कुछ महीनों से अस्पताल में भर्ती थे। उनका निधन कल सुबह हुआ। विश्वभर में ईसाई समुदाय आज एश वेडनेसडे मना रहा है। यह अवसर ईसाई समुदाय में 40 दिनों के उपवास की शुरुआत का प्रतीक है। आज से प्रतिदिन चर्च में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाएंगी। ये सभाएं ईस्टर संडे तक चलेंगी। ईस्टर संडे के दिन प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का उत्सव मनाया जाता है। खेलों में पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज दक्षिण अफ्रीका का सामना संयुक्त अरब अमीरात से होगा। दिल्ली में ये मैच सुबह 11 बजे से खेला जाएगा। वहीं दोपहर 3 बजे से कोलंबो में पाकिस्तान और नामीबिया तथा शाम 7 बजे से अहमदाबाद में भारत और नीदरलैंड्स आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में कल रात नेपाल ने स्कॉटलैंड को 7 विकेट से हरा दिया। नेपाल ने 171 रन का लक्ष्य 19 ओवर और 2 गेंद में हासिल करते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को भारत आने का निमंत्रण दिया। कहा वे उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वर्ष फ्रांस की अध्यक्षता में होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया। ईरान ने कहा उसने तेहरान के परमाणु अभियान पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए अमेरिका के साथ मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांतों पर सहमति बनाई। और खेलों में पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज शाम अहमदाबाद में भारत और नीदरलैंड्स आमने सामने होंगे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।